समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे लेकर। आज के इस अंक के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार देवेंद्र। गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम आज सवेरे।
जी,
एंड वी विल बी गिविंग यू द न्यूज, पर्टिकुलरली नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। लेट मी टेल यू मोर अबाउट द प्रोग्राम। वी विल ऑल्सो गिव यू मेट्रो सिटी अपडेट्स इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ऑल्सो वी विल प्रोवाइड यू सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू टूडे, दैट इज 29th of April 2025। सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट। देवेंद्र
जी, बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम प्रायः आपको सबसे पहले बड़ी खबरें बताते हैं दिन की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में युग्म सम्मेलन में भाग लेंगे। युग्म का अर्थ है संगम। ये अपनी तरह का पहला महत्वपूर्ण नीतिगत सम्मेलन है जिसमें सरकार, शिक्षा जगत, उद्योग जगत और नवाचार के संबंधित प्रमुख लोग शामिल होंगे। वाधवानी फाउंडेशन और सरकार के संयुक्त निवेश से करीब 1,400 करोड़ रुपए की परियोजना द्वारा संचालित ये आयोजन भारत की नवाचार यात्रा में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश के नवाचार तंत्र में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को बढ़ावा देना और शिक्षा, उद्योग तथा सरकार के बीच साझेदारी को मजबूत करना और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नवाचार को गति प्रदान करना है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर और नवाचार आधारित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप सम्मेलन के दौरान विभिन्न प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी।
जम्मू एंड कश्मीर असेंबली हैज यूनानिमसली पास्ड अ रेजोल्यूशन डिनाउंसिंग पहलगाम टेरर अटैक। In a strongly worded resolution, Assembly expressed shock and anguish over the incident and resolved to fight resolutely to defeat the nefarious designs to disturb communal harmony and hinder progress of the nation and of Jammu and Kashmir. The resolution moved by Deputy Chief Minister Surendra Chaudhary during a special session of the Assembly was passed by voice vote. Addressing the Assembly, Chief Minister Omar Abdullah said that Kashmir has revolted against terrorism for the first time since the onset of terrorism following the Pahalgam attack. The Chief Minister praised the spontaneous outpouring of grief and condemnation across the region, marking the beginning of the end of terrorism.
Pahli martaba 26 saal mein maine Jammu Kashmir mein kisi hamle ke baad logon ko is tarah bahar aate hue nahi dekha. कठुआ से लेके कुपवाड़ा तक शायद ही कोई शहर या गांव ऐसा जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले की मजम्मत नहीं की।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल से शुरू हो रही चार धाम यात्रा 2025 के दौरान व्यवस्था की समीक्षा के लिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री धामी ने कहा कि 2 मई से श्रद्धालु बाबा केदार और केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा 2025 के लिए ऑफलाइन पंजीकरण भी कल से शुरू हो गया है। दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिए विशेष काउंटर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 20 निःशुल्क पंजीकरण काउंटर भी स्थापित किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। हर वर्ष यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पवित्र स्थलों के लिए हजारों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा को देखते हुए राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं।
यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल मेट विद यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड जोनाथन रेनल्ड्स इन लंदन यस्टरडे टू एडवांस नेगोशिएशंस फॉर अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन द टू नेशंस। Mr. Goyal arrived in London for 2 days of discussions aimed at strengthening investment ties and bilateral trade. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that the talks on the free trade agreement between India and the UK are being relaunched and both sides are committed to moving the agreement forward.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नए कार्यकारी आदेश जारी किए हैं जिनमें वाणिज्यिक वाहन चालकों और विशेष रूप से ट्रक चालकों की अंग्रेजी भाषा में दक्षता की शर्त मजबूती से लागू करने का आदेश शामिल है। अंग्रेजी भाषा की दक्षता का नियम कई वर्षों से लागू है लेकिन ट्रंप का तर्क है कि इस नियम का कड़ाई से पालन नहीं होता है जो लोगों की सुरक्षा के लिए जोखिम है। एक और कार्यकारी आदेश में प्रांतीय और संघीय एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे शहरों का पता लगाकर उनकी सूची प्रकाशित की जाए जहां स्थानीय सरकारें बाहरी देशों से आने वाले लोगों के मामलों में आमतौर पर संघीय अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं करती हैं। एक संबंधित घटनाक्रम में अमरीकी संसद के प्रतिनिधि सदन ने डीप फेक अश्लील चित्रण के प्रसार पर अंकुश लगाने का विधेयक पारित किया है। ये विधेयक आपत्तिजनक सामग्री के सृजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर बढ़ती चिंताओं को देखते हुए लाया गया है।
Now, Devendra, let's give our listeners the sports updates, beginning with Baseball Asian Cup 2025. The Indian women's baseball team secured qualification for the 2025 Asian Cup after a thrilling 6-5 victory over Thailand in the Super Round stage of the qualifiers held in Bangkok yesterday. India will now face Indonesia in the gold medal match today. Regardless of the outcome, India has guaranteed its fourth consecutive appearance in the Asian Baseball Cup, the second-tier competition beneath the Asian Baseball Championship.
जी, और शगुन, कल खेला गया आईपीएल का जो मैच था जयपुर राजस्थान और गुजरात के बीच में, वो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग के चलते।
राइट।
आईपीएल क्रिकेट में कल जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हरा दिया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के लिए 210 रन का लक्ष्य दिया था जिसे राजस्थान ने 16वें ओवर में 212 रन बनाकर आसानी से हासिल कर लिया। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 38 गेंदों में शानदार शतकीय पारी खेली और यशस्वी जायसवाल ने नाबाद 70 रन बनाए। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दिल्ली में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। तो प्रमुख खबरों के बाद अब हम बात करेंगे अपने महानगरों से जुड़ी खबरों की। तो चलते हैं सबसे पहले चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु और जानते हैं शगुन के पास क्या है खबरें इन महानगरों से।
यस देवेंद्र, विल बिगिन दिस मेट्रो सिटी अपडेट सेगमेंट विद चेन्नई।
जी,
Pondicherry University and Central Power Research Institute, Bangalore officially signed a Memorandum of Understanding marking a significant milestone in fostering academic and research collaboration. The agreement, signed in a ceremony, brings together two premier institutions to drive innovations in the electrical power systems, renewable energy technologies and sustainable development solutions. The Vice Chancellor of the University, Professor P. Prakash Babu, emphasized the strategic importance of this partnership, stating that it aligns well with the university's aspiration to strengthen industry-academic linkages. The MOU establishes multiple avenues for the collaboration, including joint research projects, faculty exchange programs and expert lectures, student internships and hands-on training at CPRI facilities. I have one more update from Chennai.
Ji.
The Madras Export Processing Zone, Special Economic Zone, Tambaram, in collaboration with the Environmentalist Foundation of India, has launched restoration projects for Thirunirmalai Lake and Kadipari Lake. Funded through corporate social responsibility contributions from MEPZ-based industries, these initiatives aim to rejuvenate vital water bodies in the region. Thiru Alex Paul Menon, IAS Development Commissioner, he stated that MEPZ-SEZ is committed to fostering sustainable development that benefits both industry and the environment. The restoration efforts of Thirunirmalai Lake and Kadipari Lake focus on enhancing biodiversity, improving groundwater recharge and providing sustainable recreational spaces for the community, reflecting a model of public-private partnership in environmental sustainability. Now let's move on to Bengaluru. The Zilla Panchayat and Education Department in Karnataka will jointly organize the summer camp for students studying from class 3 to 8th standard. Well, summer is the much awaited time for students, I can say. It's the most wonderful time for them in a way.
बहुत लंबे समय से इंतजार होता है बच्चों को.
जी. To be organized, this will be organized, the summer camp, from May 2nd to 26th. The summer camp will entertain children along with creating awareness on various subjects. The camp will teach the students leadership qualities and communication skills along with reading and writing skills. They will be educated about nature conservation, civic sense, social responsibilities and local culture, traditions, lifestyles, historical significance and yoga, among other things. Now, moving on to Hyderabad. In Telangana, several women in distress turned up at the Jan Sunwai public hearing organized under the Rashtriya Mahila Aayog Aapke Dwar initiative by the National Commission for Women, NCW, in Hyderabad yesterday. NCW Chairperson Vijaya Rahatkar personally heard several cases and departments concerned have been instructed to respond within a week and complaints were immediately documented via email. The NCW has assured that the program will be conducted in districts too soon as most of the women have come from the surroundings of Hyderabad. Many well-educated women also narrated struggles involving domestic violence, dowry harassment, sexual harassment and NRI marital disputes. So listeners, these were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now over to you, Devendra, for the updates from Delhi, Mumbai and Kolkata.
Ji. दिल्ली की खबरों की बात करें तो केंद्रीय पेट्रोलियम और गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों को व्यय वंदना कार्ड वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि इस योजना को वैश्विक स्तर पर एक स्वास्थ्य मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैशलेस सुविधा इस योजना की एक बड़ी विशेषता है जो किसी अन्य स्वास्थ्य योजना में उपलब्ध नहीं है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार इस योजना के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार आज से इस योजना के लिए पंजीकरण शुरू कर रही है। योजना के अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है। दिल्ली के चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से आग्रह किया है कि राजधानी में आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए दिल्ली आर्थिक विकास परिषद का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी परिषद न केवल दिल्ली में आर्थिक विकास को नई दिशा देगी बल्कि दिल्ली को राजस्व के मामले में आत्मनिर्भर भी बनाएगी। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में ISF DSF गठबंधन के उम्मीदवारों ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव पद पर जीत दर्ज की है, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार ने संयुक्त सचिव के पद पर जीत दर्ज की है। आईसा DSF गठबंधन उम्मीदवार नीतीश कुमार अध्यक्ष पद, मनीषा उपाध्यक्ष पद और मुंतेहा फातिमा महासचिव पद के लिए चुने गए हैं। ABVP उम्मीदवार वैभव मीणा संयुक्त सचिव पद के लिए चुने गए हैं। राजधानी में नागरिकों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल कई निजी स्कूलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को यातायात के नियमों, सड़क सुरक्षा और अनुशासन के साथ साथ वाहन चलाने के प्रति संवेदनशील बनाना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम को और अधिक जनोन्मुखी बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2015 के कार्यान्वयन के दशक और प्रथम सेवा अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग, प्रशासनिक नवाचार, उत्कृष्टता और सुशासन और महाराष्ट्र राज्य सेवा अधिकार आयोग के सहयोग से सह्याद्री गेस्ट हाउस में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बोल रहे थे। श्री फडणवीस ने कहा कि वर्तमान में महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत 1000 से अधिक सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि लगभग 583 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी सरकारी विभाग 15 अगस्त 2025 तक सभी सेवाओं को ऑनलाइन करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2028 तक बुलेट ट्रेन चालू हो जाएगी। श्री फडणवीस सोमवार को मुंबई में भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर शिखर सम्मेलन में एक साक्षात्कार के दौरान बोल रहे थे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र में चल रही विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की चर्चा की। इन परियोजनाओं में वधामन पोर्ट, शक्तिपीठ राजमार्ग, तटीय सड़क और अटल सेतु शामिल है। बांद्रा पश्चिम में पाली हिल की ओर जाने वाली सड़क पर भारी ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बांद्रा किले के पास होटल ताज लैंड्स एंड के पास स्वतंत्र वीर सावरकर सी ब्रिज परियोजना को अतिरिक्त संपर्क मार्ग बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में सोमवार को सह्याद्री गेस्ट हाउस में बांद्रा विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक कार्यों के संबंध में बैठक हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने MMRDA को इस उद्देश्य के लिए एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा बल पर्यटन मित्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में बढ़ते अवसरों और प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए इस समर्पित सुरक्षा बल के माध्यम से सुरक्षित पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। और कोलकाता चलते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार 744 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का जीर्णोद्धार करेगी। उत्तर बंगाल के 6 जिलों में 192 आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। प्रत्येक आरोग्य केंद्र के लिए 7,00,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। इन केंद्रों पर टेली मेडिसिन सेवा भी उपलब्ध होगी। और श्रोताओं, महानगरों से जुड़ी खबरों के बाद महानगरों के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली के मौसम की अगर बात करें तो यहां पर आज आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं और शगुन सुबह जब हम घर से आ रहे थे तो बहुत सुहावनी हवा चल रही थी, लेकिन दिन में शायद ये हाल नहीं रहेगा। तापमान क्योंकि 40 डिग्री तक जा सकता है, जो हीट वेव की कंडीशन होगी। तो मौसम दिन में काफी गर्म रहेगा। सुबह का तापमान ठीक रहा, 23 डिग्री के आसपास। मुंबई में आसमान साफ रहने की संभावना है, तापमान 27 और 34 के बीच रहने की संभावना है। और कोलकाता में बादल छाए रह सकते हैं और बारिश होने की संभावना भी है। तापमान 34 और 27 डिग्री के बीच दर्ज किया जा सकता है। बाकी महानगरों के मौसम का हाल आप बताइए।
Yes, I will again begin with Chennai, Devendra. It is expected to have a partly cloudy sky there with possibility of moderate rain or thunderstorm. Even there, it's the same. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Now, Bengaluru, it is also expected to have a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers again. Well, the minimum temperature was 23 degrees Celsius and maximum it will be around 34 degrees. Now, talking about Hyderabad, it is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature, it will hover between minimum of 27 degrees and a maximum of 38 degrees Celsius, Devendra.
जी, और अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और ये जानने का कि आज के दिन की कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो इतिहास में दर्ज हैं। आज 29 अप्रैल है।
जी, first let's take our listeners way back in time. First we'll begin with the year 1639, Devendra.
जी.
Well, Red Fort's construction, it commenced by laying the foundation stone and it was completed on May 13 in the year 1646. Now talking about the year 1813, rubber was patented. Now let's move a little bit forward. In the year 1930, the film All Quiet on the Western Front, which was based on Eric Remarque's novel Im Westen nicht Neues, it premiered. In the year 1957, the National Defense Civil Defense College was founded at Nagpur as the Central Emergency Relief Training Institute. It functions as the training wing of the Emergency Relief Organization of the Government of India.
जी, और वर्ष 1991 में बांग्लादेश के चटगांव में आए चक्रवाती तूफान में 1,38,000 लोग मारे गए थे और 10,00,000 लोग बेघर हो गए थे। शगुन 1993 की बात करें तो बकिंगम पैलेस को आज ही के दिन पहली बार आम जनता के लिए खोला गया था और जिसे देखने के लिए 8 पाउंड का टिकट लगाया गया था। और वर्ष 1997 में रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW द्वारा रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। OPCW में दुनिया के 193 सदस्य देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। ये संगठन रासायनिक हथियारों को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयासों की निगरानी करता है।
जी, नाउ टॉकिंग अबाउट द ईयर 1998, इंडिया एंड म्यांमार अग्री अपॉन स्टेप्स टू इंश्योर ट्रांसबॉर्डर सिक्योरिटी, कोऑपरेशन इन द फाइट अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट्स।
जी, 1999 में बच्चों के यौन शोषण पर रोक संबंधी विधेयक जापानी संसद में मंजूर हुआ था। वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार क्रिकेट विश्व कप जीता था।
Well, in the year 2018 now, the animated TV series, The Simpsons, it aired its 636th episode, surpassing Gunsmoke, to become the longest-running scripted primetime show इन द यूनाइटेड स्टेट्स।
जी, और इसे कुछ साल पहले की बात करें तो वर्ष 2010 में भारत ने दुश्मनों के रडार की पकड़ में नहीं आने वाले आधुनिकतम उपकरणों से लैस युद्धपोत आईएनएस शिवालिक को नौसेना में शामिल किया था।
जी,
और अब हम स्मरण करेंगे, याद करेंगे उन महान लोगों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। इस क्रम में स्मरण कर रहे हैं हिंदी साहित्यकार बालकृष्ण शर्मा नवीन को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। बालकृष्ण शर्मा ने एक कवि और गद्यकार के रूप में साहित्य की सेवा की, वो अद्वितीय वक्ता भी थे। प्रगतिशील लेखन के अग्रणी साहित्यकार पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 को ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने उज्जैन से 10वीं और कानपुर से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने उर्मिला का लेखन 1921 में प्रारंभ किया, जो पूरा हुआ 1934 में। ये कृति प्रकाशित होती है सन 1957 में। इस काव्य में द्विवेदी युग की इति वृत्तात्मकता, स्थूल नैतिकता या प्रयोजन स्पष्ट देखे जा सकते हैं। 6 सर्गों वाले इस ग्रंथ में उर्मिला के जन्म से लेकर लक्ष्मण से पुनर्मिलन तक की कथा कही गई है। उर्मिला का विरह कवि की प्रकृति के अनुकूल था और कला की दृष्टि से सबसे सरस एवं प्रौढ़ अंश वही है। सुविख्यात तबला वादक अल्लाह रखा खां का भी आज हम स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज जयंती है। अल्लाह रखा खां भारत के सर्वश्रेष्ठ एकल तबला वादकों में से एक माने जाते हैं। अल्लाह रखा खां 12 वर्ष की उम्र से ही तबले पर ताल में माहिर हो गए थे। अल्लाह रखा खां ने उस्ताद कादिर बख्श से तबले की तालीम ली। इसी दौरान आपको गायकी सीखने का भी अवसर मिला। अल्लाह रखा खां ने 1945 से 1948 के बीच सिनेमाई दुनिया में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन इनका मन फिल्मी दुनिया में बहुत समय तक नहीं लगा। उन्होंने बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां, पंडित वसंत राय और पंडित रविशंकर जैसे बड़े कलाकारों के साथ संगत की। पंडित रविशंकर के साथ उस्ताद अल्लाह रखा खां का तबला वादन काफी लोकप्रिय भी हुआ। इस श्रृंखला में 1967 का मॉन्टेनरी पोप फेस्टिवल तथा 1969 का वुडस्टॉक फेस्टिवल बहुत लोकप्रिय हुए। संगीत के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1977 में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया और 1982 में संगीत नाटक अकादमी ने अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया। आइए सुनते हैं उस्ताद अल्लाह रखा खां का तबला वादन और साथ में है पंडित रविशंकर।
Let me tell our listeners, Devendra, that he has been known for his knowledge and control of the rhythm, as we can also hear, and his technical expertise on the tabla. Well, he popularized tabla as a solo instrument, not only here in India, but also around the world. Moving on, and now we'll talk about Kedarnath Sharma, film director, producer, screenwriter, and also a lyricist of the films. Well, he had great success as a director of movies, which I'll name now, Neel Kamal, Baabre Nain, and also Jogan. And we have such a song from his movie, Baabre Nain, to listen in. Well, listeners, moving ahead, we are also remembering today Abraham Gessner, geologist, also he has been an author, also a chemist. Well, he made his contributions, let me tell you, listeners, to the petroleum industry. Well, because he invented kerosene oil, and because of this, he has been also regarded as the founder of the modern petroleum industry. Now, talking about his geology contribution, he studied, described and mapped the distribution of rock formations in Nova Scotia first, and also Prince Edward Island. So, this was by Abraham Gessner.
जी, भारत के धार्मिक महाकाव्य रामायण को जब टीवी पर्दे पर उतारा गया, तो समूचा भारत तो उस धारावाहिक का जैसे हिस्सा बन गया।
जी.
रामानंद सागर के सुप्रसिद्ध टीवी धारावाहिक के कलाकारों को देवतुल्य सम्मान मिलने लगा था। उस समय सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखालिया भी उन्हीं में से एक थी। आज दीपिका का जन्मदिन है। वो समय ऐसा था कि लोग दीपिका को सीता समझने लगे थे। दीपिका चिखालिया ने कई अन्य पौराणिक धारावाहिकों में भी अभिनय किया। रामायण धारावाहिक की लोकप्रियता पर दीपिका चिखालिया का कहना था कि लोग हमें देखकर श्रद्धा भाव से झुक जाते थे। एक संवाद दीपिका के स्वर में आपको सुनवाते हैं।
मेरे लिए वो मेरे बनवासी वीर ही तीनों लोगों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। उस महान पुरुष सिंह के सामने तुम मुझे एक कायर तुच्छ सिंगल लिखते हो, जो चोरों की भांति आकर एक असहाय अबला को छल से उठा ले गए। धिक्कार है तुम पर।
Well, yes, we have been remembering and loving this particular dialogue, also the whole series as well.
जी, और ये ऐसे धारावाहिक हैं शगुन की, जब उस समय रामायण चलता था तो ऐसा लगता था कि लॉकडाउन लग गया है।
True, true.
जो हमने अभी कोविड में देखा था, ये उस दौर में देखने को मिलता था।
Yes, it was aired again and again we have felt that.
Yes.
Also, moving forward now, we are also remembering today Raja Ravi Verma. Well, painter and artist. His works are one of the best examples of the fusion of European academic art with a purely Indian sensibility and iconography. He was notable for making affordable lithographs of his paintings, which are available to the public, which greatly enhanced his reach and influence as a painter and also a public figure. Well, his lithographs increase the involvement of common people with fine arts and defined artistic taste among the common people. Well, he was part of the royal family erstwhile, Parappanad, Malappuram district.
जी, सुप्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान की आज पुण्यतिथि है। भारतीय सिनेमा और सिने प्रेमियों के बीच कभी न भुलाए जा सकने वाले उनके अभिनय ने उन्हें अमर बना दिया। ये अलग बात है कि महज 53 वर्ष की अल्पायु में 2020 में आज ही के दिन वो दुनिया से अलविदा कह गए। उन्होंने द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेमसेक, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जैसी फिल्मों में जबरदस्त अभिनय किया। हासिल फिल्म के लिए उन्हें वर्ष 2004 का सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने बहुत अधिक फिल्मों में अभिनय तो नहीं किया, लेकिन जिस भी फिल्म में उन्हें मौका मिला उन्होंने अपने किरदार को यादगार बना दिया। हिंदी सिनेमा की 30 से ज्यादा फिल्में करने वाले इरफान को हॉलीवुड में भी पहचान मिली। 2011 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2017 में प्रदर्शित फिल्म हिंदी मीडियम के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया था। आइए सुनते हैं उनका ये संवाद।
मैं जानता हूं, मैंने महसूस किया है, भले ही मैं उसे साबित ना कर पाऊं, मैं कितना कुछ पीछे छोड़ आया हूं, मेरी फैमिली, जू, इंडिया, आनंदी। मैं समझता हूं कि आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है। पर सबसे तकलीफ तब होती है जब आपको अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता।
well. Irfan Khan there, widely regarded also as one of the finest actors in world cinema. Let me also tell you listeners that he made his film debut with a small role, brief role, in Salaam Bombay. And this was followed by years of his struggle. Well, we have one more very inspiring dialogue from him. Let's listen in, listeners.
जो हमें कोई बहुत बड़ा गोल अचीव करना होता है ना, तो हमें अपने सारे रिश्ते, सारे लगाव, सब भूलकर हमको वो करना पड़ेगा जो हमको करना चाहिए।
Well, yes, Irfan Khan there for you, listeners. Well, moving on, we are also remembering today Russell Amos Kirk, philosopher, moralist, historian, and social critic, also a literary critic, author, and the novelist who influenced 20th century American conservatism. Well, in the year 1953, he authored The Conservative Mind, which traced the development of conservative thought in the Anglo-American tradition, and Edmund Burke. Well, listeners, today we are also remembering a singer, playback singer, Swarnalatha. Today it's her birth anniversary. Well, in a career spanning almost 22 years, she has recorded many, many songs and in many, many languages such as Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada and also Hindi, Urdu and Bengali as well. She won the National Film Award for Best Female Playback Singer for her rendition of the song Porala Punnathai from the film Kathurthamma. And the song was composed by A.R. Rahman. Talking of which, let's listen to her voice by the way of some of the memorable songs which she has recorded.
और इस खूबसूरत आवाज के साथ ही, इस संगीत के साथ ही हम चाहेंगे आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की आप सभी से अनुमति, लेकिन आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ।
Also listeners, stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, which is our Hindi news bulletin, which will be followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thank you so much listeners for tuning in. We hope you have a wonderful day ahead.
और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप ये कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in। दीजिए अनुमति। नमस्कार।